पांचवें अध्याय पे बात कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, अध्याय पांच। कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता सीखना, सो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। आप आगे आगे आए ना, आप इतना पीछे क्यों बैठे हो? सो यू कम हेयर, यू नो, या हाँ। सो कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता सीखना, ठीक है मैडम। सो छोटे ग्रुप का ये फायदा है कि एक छोटा सा गोला बना के हम सब बैठ सकते हैं ना। सो सो ये क्यों महत्वपूर्ण अध्याय? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कृष्ण भावनामृत से जुड़ना काफ़ी नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावनामृत में जुड़ गए काम खत्म हुआ। इसमें टिके रहना है, इसके अंदर जिंदा रहना है। हम बलराम जयंती पे बात कर रहा था मैं मनोज प्रभु से कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण भावनामृत में जीवित रहें, है ना? जैसे हम इस संसार में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, है ना, अच्छा खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, फल फ्रूट, है ना, हर चीज़ लेते हैं हम, समाज में लोगों से मिलते हैं ताकि ऐसा नहीं हो कि लोग बोले भैया गायब ही हो गया वो। हाँ, सो जिस प्रकार हम इस शरीर में जिंदा रहने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में भी जीवित रहने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आखिरी सांस तक, जब तक हमारी चेतना चल रही है, तब तक हम भगवान के बारे में स्मरण कर सकें, है ना? क्यों? क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, हाँ, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। कि मृत्यु के समय जो मेरा ध्यान करेगा, मैं हाँ उसको अपने धाम लेके जाऊंगा, इसमें कुछ संशय नहीं है, है ना? तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग तो मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं टेंशन की बात नहीं है, मैं हेल्प करूँगा, ददामि बुद्धि होगा। आप पूरा जीवन लगाओ मेरी भक्ति में, जब आप स्मरण नहीं कर पाओगे तो उस समय मैं आपका ध्यान रखूँगा, नहीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण भावनामृत में लगे रहें। तो आप सबने ये चैप्टर पढ़ा है, तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सी लाइन है जो हमें कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से लगे रहने के लिए प्रेरित कर रही है? उस लाइन के आधार पर भक्त जो है कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से लगा रह सकता है। ऐसी कौन सी लाइन है इस चैप्टर में?
जो देवताओं ने जो कहा था कि जो कार्तिक है जो शिव के वीर्य से उत्पन्न होंगे, और जो है उनको वो इंद्र के राक्षसों को पराजित करेंगे, जो है ना, तो पार्वती जैसे हैं वो लिंग के ऊपर पूजा करती हैं भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ विचलित नहीं होते। और जैसे कि जो है वो चिंतामणि जो थी,
सो इनका पॉइंट है कि धीर होना चाहिए, ये पॉइंट है ना आपका, है ना? आप पॉइंट बताओ, स्टोरी मत बताओ, स्टोरी की हम बात करेंगे। सो पॉइंट है धीर, और कोई बोल
केवल है भक्तिया नारायण प्रायण, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं केवल है भक्तिया वासुदेव प्रायण भगवान कृष्ण
कह रहे हैं कि केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। हाँ भक्त्या हम एक या ग्राह्यम, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। लेकिन हमारा प्रश्न है कि भक्ति में हम दृढ़ कैसे रहें, चलो घुस गए भक्ति में तो दृढ़ कैसे रहें हम भक्ति में।
प्रभु जैसे कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कृष्णा कह रहे हैं मैं भगवान हूँ तो इसको यूं ही मूर्खतावश स्वीकार ना करें, उसको ज्ञान और श्रद्धा के साथ अगर हम भगवान को जानने का और भगवद गीता को जानने का प्रयास करेंगे तो दृढ़ता हमारी ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहेगी। या यूँ कहें कि अगर हम ज्ञान और श्रद्धा के श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ज्ञान लेते रहेंगे तो उससे भक्ति में हमें हेल्प करेंगे।
इसमें हमें लगातार सेवा में बने रहना है, लगातार हम सेवा में बने रहेंगे तो दृढ़ता हमें अवश्य आएगी। कंटिन्यू।
हरे कृष्ण। इसमें दो बातें इम्पोर्टेंट रूपा जी हमें बता रहे हैं कि जो दो पॉइंट है जैसे भोग प्रवृत्ति और त्याग प्रवृत्ति, तो रूपा जी इसके बारे में बता रहे हैं कि जो हमारी ये दोनों प्रवृत्ति है इनको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भोग के लिए हमारे लिए है ही कुछ नहीं और त्याग के लिए हमारा है ही कुछ नहीं, तो हम त्याग क्या करेंगे। तो इन दोनों को इन दोनों की जानकारी के बाद भी इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, ना भोग से और ना त्याग से, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। जैसे भगवान कहते हैं कि भाई इन सब को छोड़ कर सर्व धर्मान परित्यज मामे कम शरणम व्रज।
हमें प्रभु दृढ़ता से वैष्णवता के रूल फॉलो करने पड़ेंगे।
दो पेज का तो चैप्टर ही। चलो आपका नाम क्या है?
जयराम।
जयराम प्रभु थोड़ा सा करीब आ गए थे सो बाकी आपके उत्तर इतने सटीक नहीं रहे, आप कुछ कहना चाहते हो? अच्छा तो प्रश्न ये था कि कृष्ण भावनामृत में हम लोग दृढ़ता से कैसे कोई भक्त जुड़ा कैसे बना रह सकता है कृष्ण भावनामृत में, प्रश्न ये था है ना। तो वो बना रह सकता है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, हर चीज भगवान की है ना, हर चीज भगवान की है। हमने ये लाइन सुन ली लेकिन इसका मतलब कई बार हम नहीं समझ पाते। हर चीज़ भगवान की है तो क्या ये शरीर भगवान का है? ये शरीर भगवान का है क्या? ये मन भगवान का है? ये मन भी भगवान का है क्या? ये बुद्धि भगवान की है क्या? ये अहंकार भगवान का है क्या? ये परिवार ये जगत सारा भगवान का है क्या? हमारी इच्छाएं भगवान की है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या हमारी इच्छाएं भगवान की हैं या नहीं है? सो एक उत्तर है कि नहीं है। अच्छा और
सब कुछ भगवान का
है। सब कुछ भगवान का है तो जब सब कुछ भगवान का है तो हमारी इच्छाएं भी भगवान की हैं, लेकिन भगवान ने हमें दी हुई है यूज़ करने के लिए। जैसे ये शरीर भगवान का है लेकिन हम यूज़ अपने लिए कर रहे हैं, नहीं? ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान की नहीं है, बंद हो गया। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान की नहीं है। एक एक वस्तु जो है, नहीं प्रभु माइक का प्रॉब्लम नहीं है, बीच में कहीं पे बंद हो रहा है वो। सो हर चीज जो हम सोच सकते हैं और जो नहीं सोच पा रहे सब भगवान ही की हैं। हर चीज़ भगवान की है। क्यों भगवान की है? क्योंकि भगवान से ही प्रकट हुई है। अहम सर्वस्व प्रभुओ, हर चीज़ मुझसे ही प्रकट हुई है। क्योंकि हर चीज़ भगवान से प्रकट हुई है इसलिए हर वस्तु भगवान की संपत्ति है। हाँ, हर वस्तु भगवान की संपत्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमें भगवान को, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैंने भगवान से बंगला गाड़ी नहीं मांगी, है ना, मैं तो भगवान से कह रहा हूँ भगवान को दाल रोटी चलती रहे। अरे क्यों दाल रोटी चलती रहे? आपने दाल रोटी भी भगवान से क्यों मांग ली? हाँ, क्यों आपने, आप क्यों आप दाल रोटी लेने के भी अधिकारी हो, पात्र हो आप, है ना? ऐसा कोई भी कारण नहीं है, है ना? क्योंकि हर चीज़ ही भगवान की है। जब आपका कुछ है ही नहीं तो आप भगवान से मतलब कैसे बोल सकते हो कि हे भगवान चलो ये दे देना, है ना? आपकी हिम्मत नहीं हुई बंगला गाड़ी मांगने की, आपने दाल रोटी मांग ली। जिसने, जिसकी हिम्मत थी उसने बंगला गाड़ी मांग ली, तो उसमें और आप में फ़र्क क्या हुआ? नहीं। कई लोग कहते हैं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बोलते हमें कुछ नहीं चाहिए, घर में सुख शांति बने रहे। अरे और क्या चाहिए, सब कुछ तो आ गया इसके अंदर, नहीं? और क्या मतलब, क्या मतलब खोद दोगे भगवान के जो धाम, कोई खोद के मिट्टी निकालोगे सारी, मतलब क्या और चाहिए यार आपको? चिंतामणि पत्थर पकड़ा दें आपको, जिसको छुए भैया सोना बन गया, बेच बेच के अमीर बन जाओ, मतलब यही रह गया, सुख शांति चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि भगवान बिस्तरे पे ना लिटाए, नहीं उठा ले, ऐसा नहीं हो कि रगड़ रगड़ के मरे। भैया आपने ऐसा क्या किया है कि आप रगड़ रगड़ के नहीं मरोगे? हाँ, ऐसा तो ये सारी जितनी भी इच्छाएं हैं ये सारी इच्छाएं भौतिक हैं। हम भगवान से कुछ भी अगर मांग लें तो वो सारी चीज़ भौतिक है। भगवान से हम सेवा ले रहे हैं, हम भगवान से सिर्फ एक चीज़ मांग सकते हैं, क्या? भगवान की सेवा। अगर हम भगवान की सेवा के अतिरिक्त एक सुई भी अगर मांग रहे हैं तो हम भगवान से सेवा ले रहे हैं। जबकि हमारा जो स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है, हमारी प्रकृति क्या है? भगवान की सेवा करना। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति हैं और प्रकृति स्त्रीलिंग है। स्त्री का कर्तव्य है पुरुष की सेवा करना। तो भगवद गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में अर्जुन भगवान को कह रहे हैं पुरुषा पुरुषम शाश्वतम, कि आप पुरुष हो, शाश्वत हो आप। तो भगवान जो है वो पुरुष है और हम प्रकृति कैसे हैं? ये कहाँ पे बताया है? भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, है ना? जैसे भगवान ने पहला श्लोक बोला, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, आठ जो वस्तुएं ये मेरी भिन्न प्रकृति है, निकृष्ट हैं ये। हाँ, फिर भगवान ने कहा अपरेयम इतस्तु अन्यम, कि इसके अलावा एक और भी जो है प्रकृति है विधि, इसको जान लो। विधि प्रकृतिम, के इसको जान लो, ये जो प्रकृति है विधि प्रकृतिम में पराम, ये मेरी परा, हाँ ये मेरी सुपीरियर, ये उत्कृष्ट एनर्जी है। और उसका नाम क्या है? भगवान कह रहे हैं जीव भूताम महाभाव, हाँ ये दम धारेते जगत, ये पूरे जगत का शोषण करने की कोशिश कर रही है। हम लोग जगत का शोषण ही तो कर रहे हैं, जितना हाथ लग रहा है उतना शोषण करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये दम धारेते जगत, तो जो जीव है ये भगवान कह रहे हैं प्रकृति है, और प्रभुपाद एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो प्रकृति का मतलब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का मतलब है कि वो पुरुष के अधीन रहनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरा, है ना, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब पहली बात क्या निकली, हम प्रकृति हैं, दूसरी बात निकली भगवान पुरुष हैं, और तीसरी बात क्या है कि प्रकृति हमेशा पुरुष के अधीन रहती है और उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, नहीं। सो उनकी अध्यक्षता में कार्य करना है हमें, क्यों करना है, क्योंकि हर वस्तु भगवान की है। अगर हम चारों ओर अगर हम सोचें, जहाँ पर भी हमारी दृष्टि जा रही है, दृष्टि दो तरह की होती है, एक होती है भोग दृष्टि और एक होती है सेवा दृष्टि, है ना। अभी हमारी दृष्टि भोग दृष्टि है, हम प्रसाद को देखते हैं, हम सोचते हैं हमें कब मिलेगा हम कोई मकान देखते हैं तो हम सोचते हैं यार हमें रहना चाहिए था इस मकान में, नहीं। कोई बड़ी गाड़ी देखेंगे, सुंदर स्त्री देखेंगे तो हम सोचेंगे यार हमारे लिए होनी चाहिए थी, किसी और को कैसे मिलेगी। हम विचार प्रकट नहीं करते, जो प्रकट करते हैं लोग बोलते हैं यार ये पापी है, नहीं। तो पापी और हम में फर्क क्या है, वो प्रकट कर रहे हैं, हम प्रकट नहीं कर रहे हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं, मन में विचार आता है, चुप करके बैठ जाते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, नहीं। सो ये भोग दृष्टि है कि जिस पे नजर डाली ये मेरे लिए है, ये भोग दृष्टि है। लेकिन दूसरी दृष्टि है सेवा दृष्टि। सेवा दृष्टि का मतलब किसी भी वस्तु को देखा तो सोचा कि ये भगवान की सेवा में कैसे लगी है, कैसे लगेगी ये वस्तु भगवान की सेवा में, वो सेवा दृष्टि है। तो हम भक्ति में दृढ़ता से बने रह सकते हैं जब हम अपनी भोग दृष्टि को सेवा दृष्टि में बदल दें, है ना। और वो हम बदलेंगे इस श्लोक को आत्मसात करके, ईशावास्यम इदम सर्वम, क्योंकि हर चीज भगवान की है, इसलिए भगवान के सेवा में लगाने चाहिए। और भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हर एक वस्तु का मैं ही भोगता हूँ, और सभी लोगों का मैं स्वामी हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, है ना। और अगर ये पता चल गया, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, ये पता चल गया तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी, है ना। भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, है ना। सो जब हम इस श्लोक को, ईशावास्यम इदम सर्वम, जब हम ईशोपनिषद के इस श्लोक को जब हम आत्मसात कर लेंगे, जब हम अपने मन में उतार लेंगे और हर चीज को भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करेंगे, तो हमें जो तकलीफें आएंगी, हम उन तकलीफों को क्या सोचेंगे कि भगवान ने भेजी है हमें सुधारने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप तो कुछ खाते ही नहीं, है ना, और देखो आपकी सेहत भी ढीली ढाली सी है, हम तो सब कुछ खा लेते हैं। और भैया आपने पाप कम कर रखे हैं, हमने ज्यादा कर रखे हैं, हम काट रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है काटने की, है ना। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हम, और ये जो अनुभूति है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये अनुभूति आएगी कैसे, ये अनुभूति आएगी प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तपस्या से, है ना। जब हम तपस्या करेंगे, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो ये जो तपस्या है ये शुरू में बहुत कड़वी लगेगी, लिखा है ना इसमें, है ना। क्यों कड़वी लगेगी? क्योंकि तपस्या सतोगुण में आई है, ये सतोगुणी तपस्या है। और सतोगुणी जो तपस्या है, भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवद गीता में कि देखो जो सतोगुणी तपस्या है शुरू में कड़वी लगती है। सुबह 4 बजे उठना, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना, नहीं, ये तपस्याएं शुरू में बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन उसका जो फल है वो फल अमृत के समान मीठा निकलेगा। सो अगर भक्त को दृढ़ता से कृष्ण भावनामृत में बने रहना है तो आवश्यकता है ये समझने की कि हर वस्तु भगवान की संपत्ति है, और ये समझने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब है भोग नहीं करना, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना। और जब हम ये प्रयास करेंगे तो हमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, और उस समय हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य, हाँ, हमें लगे रहना पड़ेगा गुरु की आज्ञा समझकर। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि हम ये मन नहीं करेगा लेकिन गुरु ने बोला है करके हम चाहे अनमने भाव से भी शुरू में उसको करते रहे, धीरे धीरे हमारा मन उसमें रमना शुरू हो जाएगा, है ना। जब हम तपस्या में दृढ़ हो जाएंगे तो इस श्लोक को हम आत्मसात कर पाएंगे, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा घृता कस्य स्वित धनम। जान लो किसका धन है, किसकी संपत्ति है, ऐसे मत चोरी करो, है ना, जान लो किसका धन है ये, है ना, ठीक है। तो ये जो प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तरीके से 5वें अध्याय में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम दृढ़ता से बने रह सकते हैं। तो अब मैं
हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद जी इस चैप्टर में जो है तपस्या और कंट्रोलिंग में बता रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत के अंदर किया गया जो पश्चाताप है वो ही वास्तविक पश्चाताप है, और यही जो प्रश्न है वो परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से कि मुझे उन सब चीजों के बारे में मत बताइए जिससे कि जो पश्चाताप करने से थोड़ी देर के लिए मैटेरियलिस्टिक फायदा पहुंचे, जिससे थोड़ी देर के लिए भौतिक फायदा पहुंचे, वो सब चीजें मुझे मत बताइए, क्योंकि वो सब चीजें तो उस तरह से हैं जिस प्रकार जो एक हाथी होता है वो थोड़ी देर के लिए नहाने के लिए चला जाता है और फिर जब वापस से जब वो आता है तो फिर से मिट्टी छिड़क लेता है अपने ऊपर और फिर से वैसा का वैसा ही गंदा हो जाता है। तो जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो बिना किसी एफर्ट के अपने आप आ जाती है, जैसे कि बांस के जंगल में अपने आप आग लग जाती है और फिर वर्षा होने के बाद दोबारा से जो बांस का जो जंगल है वो दोबारा से पनप उठता है। इसी प्रकार जो कार्मिक तरीके से जो पश्चाताप दूर किए जाते हैं, जैसे ज्योतिषी हमें बताते हैं, है ना, कि कोई भी वो हमको बताएंगे कोई भी चीज़ की, शनि मंदिर में चले जाओ या शिव जी के मंदिर में आप 16 सोमवार आप जल चढ़ाइए, तो वो इसलिए ये है ना कि हमारे जो सिन है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाएंगे और उससे कुछ सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन फिर से क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है पाप करने की तो वो प्रवृत्ति हमारी फिर से हमको पाप कर्मों की तरफ ले जाएगी। तो जो परीक्षित महाराज है वो इसे रियल लिबरेशन नहीं मानते और वो बोलते हैं कि इस तरह के जो उपाय हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो तो कृपया करके आप मुझे एक कोई ऐसी चीज बताएं जिससे कि इसका इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल पाए। तो सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत में जो किया गया जो तप है, तपस्या है, उसके जरिए आप जो आपके जो जितने भी जो भौतिक कर्म हैं आप उनको एक तरह से वैसे जला सकते हैं जैसे कि बीज आप भून दे तवे पर और फिर वो उससे उसके बाद में वो दोबारा से पनपते नहीं हैं जी। तो प्रभु जी मुझे इतना ही हाँ एक और चीज़ आई मुझे याद में एक और चीज़ याद आ गई कि हाँ, और इसका एक तरीका बताया कि सबसे पहले श्रील प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये उस व्यक्ति के साथ में हो सकता है जो क्वेश्चनिंग करता है, जो प्रश्न पूछता है, था तो भ्रम जिज्ञासा, तो जो इस प्रकार अपनी बुद्धि का उपयोग करता है कि मैं दुख में क्यों हूँ और उसका सॉल्यूशन क्या है, और फिर सॉल्यूशन में फिर वो तपस्या की तरफ बढ़ गए हैं बुक के अंदर। तो प्रभु जी मुझे अभी इतना ही मैं पढ़ा।
ये एक्चुअली हरे कृष्ण ये इस चैप्टर से नहीं था जो आपने जो डिस्कशन किया, ये फोर्थ चैप्टर का है, ये हम अभी फिफ्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना, बट दैट्स ओके, आपने अच्छे पॉइंट बोले आपने।
इस चैप्टर में जो प्रभुपाद जी हमें यहाँ समझा रहे हैं कि जो हमारी प्रवृत्ति है मेन भोग प्रवृत्ति है, त्याग प्रवृत्ति दो मेन इसके अंदर बताई गई हैं, तो ये समझा रहे हैं कि एक्चुअल में भोग प्रवृत्ति भी हमारी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा है ही कुछ नहीं तो हम भोग क्यों करें, तो ये भी एक तरह से बनावटी बातें हैं। और या जैसे त्याग प्रवृत्ति है, त्याग में ये कह देते हैं कि भाई ये छोड़ देना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, तो छोड़े किसे, जब अपना है ही कुछ नहीं तो छोड़ना क्या है। इसको छोड़ने के लिए तो इसलिए कहा जाता है कि हमने इसको ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है, एक्चुअल में तो हमारा कुछ है ही नहीं, ज़बरदस्ती हमने इसको पकड़ा हुआ है। हम ज़बरदस्ती कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, जबकि अपना कुछ है ही नहीं, सभी कुछ तो भगवान का है, तो हमने छोड़ना क्या है। तो इन दोनों प्रवृत्तियों से, दोनों से ही हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें जानना पड़ेगा कि सभी कुछ भगवान का है, ना हम कुछ भोगने के लिए हैं, जैसा कि भगवान कहते हैं भोक्तारम् यक् तपश्याम, तो भोक्ता भी भगवान है, इसलिए हमारे भोगने के लिए भी कुछ नहीं है। और जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हमारे छोड़ने के लिए भी क्या है, ये हमारी गलत फहमियाँ है जिसको हम अपना समझते हैं। तो इसी चक्कर में कुछ लोग घूमते रहते हैं, कभी भोग करने की कोशिश करते हैं, भोग करते हैं जब थक जाते हैं तो फिर त्याग करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से घड़ी के पेंडुलम की तरह एक तरह से घूमते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारा इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को छोड़ के, भगवान जैसा कहते हैं कि सर्वधर्मान परितः, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, तो इस तरह की सेवा हमें भगवान की करनी चाहिए। और उसमें भी क्या है, बड़े धैर्य भाव से सेवा हमें करनी चाहिए। यहाँ दो उदाहरण प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, भगवान शिव का दे रहे हैं, हौसला हरदास ठाकुर जी का दे रहे हैं, दो बहुत बड़े उदाहरण हैं धैर्य के हमारे लिए। इन सबको उस लेवल पर ठीक है हम नहीं कर सकते, पर एक तरह से एग्जाम्पल है तो हम कोशिश कुछ कर सकते हैं इनको फॉलो करने की, इस तरह के प्रयास करने की। तो इस तरह से हमें धैर्य बनाते हुए भक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए।
जैसे कि प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि जब लोग भौतिक व्यक्ति जो हैं, मतलब जैसे हम सभी बदजीव हैं, वो भोग जब हर चीज़ का कर चुके होते हैं तो वो उस चीज़ से ऊब जाते हैं और उस ऊब जाने के कारण ही उसको छोड़ देते हैं वो लोग। और जैसे ही कुछ समय के बाद में जब वो त्याग से फिर से उनकी इच्छा होती है तो वो फिर से भोग करने लगते हैं। तो इस टाइप से जो प्रोसीजर है भोगने का और फिर से त्यागने का, इस प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा। हमें अपने आप को कृष्ण भावना, ये ईशावश्य इदम सर्वम जो श्लोक, उसको पहले जानना पड़ेगा कि हर चीज़ कृष्ण की है और हमारी कुछ है ही नहीं। यदि हमारी है ही नहीं तो हम उसका भोग नहीं कर सकते और ना ही उसका त्याग कर सकते हैं। तो उसका जो मेन उद्देश्य है कि सभी चीज़ें भगवान की हैं। जिस प्रकार घर में एक बच्चा होता है, वो शाम को जब जैसे उसके डैडी ऑफिस से आते हैं तो वो कहता है मुझे आप 100 रुपीज़ दे दो, और वो दे देते हैं। तो उसमें से अगर वो 10 रुपये का सामान लाता है और 90 रुपये वापस अपने पास रख लेता है, तो वो सोचता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है, वो उसके फादर की है, बट उसे अज्ञानवश वो ये समझ बैठता है कि ये मेरी। अगर वो पैसे वापस अपने डैडी को दे देगा तो जब भी उनसे मांगेगा तो उसे मिल जाएगा या उनकी सेवा में लगाएगा, तो वो उससे खुश भी होंगे। उसी तरह से यहाँ बताया गया है कि जब सारी ही संपत्ति भगवान की है तो हमारा कुछ इसमें है नहीं, ना ही हम उसका त्याग कर सकते हैं और ना ही हम उसका भोग कर सकते हैं।
लेकिन अगर डैडी से पैसे मांगे नहीं दिए,
ऐसा ऐसी जो हाँ जो इच्छा होगी, लेकिन यहाँ पर जो इच्छा की बात हो रही है, यहाँ हमारी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, हमारा सेवा भाव होना चाहिए सर अपने भोग के लिए, क्योंकि वहाँ बच्चे की जो इच्छा है वो अपने भोग के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो इच्छा की बात हो रही है वो भगवान की सेवा के लिए हो रही है, क्योंकि वो बच्चा है, वो अभी अज्ञानी है। तो शुरुआत में हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी भगवान से इसी टाइप से मांगते हैं। हम जब भगवान से जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ इच्छा के कारण जुड़ते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये चीज़ें हमें नहीं मांगनी है, और धीरे धीरे हमारी दृढ़ता तभी बढ़ती है जब हम सेवा में लगते हैं और गुरु के निर्देशन में वर्क करते हैं। जैसा उनका आदेश होगा वैसा ही करेंगे तो हम दृढ़ निश्चय होंगे, तभी हम कृष्ण भावनामृत बन सकते हैं।
सो शुरू में हम जुड़े किसी भौतिक लक्ष्य से, लेकिन बाद में हमें समझ में आ जाएगी, है ना। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पर दे रहे हैं, ध्रुव महाराज का दे रहे हैं ना। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो ध्रुव महाराज बहुत ही पछता रहे थे, यो मैंने ये क्या कर दिया, सुसाइड कर लिया मैंने। मैं मतलब जैसे किसी राजा के पास गए, राजा ने बोला क्या चाहते हो, तो चावल के दाने मांग लिए, जबकि वो राजा कुछ भी देने को तैयार है और सक्षम है देने के लिए। ऐसा नहीं है कि तैयार है सक्षम नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सक्षम है तैयार नहीं है, दोनों स्थिति में आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन वहाँ तो तैयार भी है और सक्षम भी है, और फिर हमने चावल के दाने मांग लिए, तो कितना बड़ा मूर्खता है। तो कह रहे हैं कि मुझे मतलब क्या मिल सकता था, मैंने कांच के टुकड़े मांग लिए भगवान से, है ना। सो हमें शुरुआत में ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि चार तरह के लोग जुड़ते हैं मेरी भक्ति में, है ना, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा, चार तरह के लोग मेरी भक्ति में जुड़ते हैं, है ना। लेकिन हमें, हम जुड़ गए, लेकिन हमें आरती अर्थार्थी जिज्ञासु के स्तर पे नहीं रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और ज्ञान के स्तर को प्राप्त करना चाहिए, और पूरा ज्ञान सहित जो है हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पूरी नॉलेज के साथ, है ना, पूरे सोच समझ के साथ होशो हवास में हम भगवान की सेवा में खुद भी जुड़ें और हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। ठीक है,
मेरे लिए तो काफी टिपिकल है। मतलब भगवान के लिए सरेंडर कर पाना एक तपस्या से ही आएगा। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर से वो सेंस डेवलप नहीं हो पाएगी कि हम एक वैष्णव है और भगवान की ये सारी वस्तुएं हैं, भगवान के लिए हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं। मैन इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं कि हमें अपने सीनियर्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे अंदर वो सेंस डेवलप हो पाए या हमारे अंदर वो दिव्य गुण आ पाए जिससे हम ये समझने लगे कि ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं। जिस तरह एक उदाहरण दिया था आप ही ने, लोहे को अग्नि में डालो लाल, फिर बाहर निकाल लो, फिर वैसे के वैसे ही अपने रूप में। तो अभी प्रेजेंट में हमारी स्थिति, तो मेरी तो स्थिति वही है और हमारी स्थिति, हमें अपने आप को बस डिवोशनल एक्टिविटी में रखना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ रहा है क्योंकि माया तो बड़ी पावरफुल है। बहुत सारे, जैसे अगर जंगल में किसी हाथी को फंसाना होता है तो गड्ढा खोदने के बाद उसके हथनी खड़ा करते हैं, वो उससे आकर्षित होकर गड्ढे में ही फंसते हैं। फंसने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं है, कैप्चर्ड है वो बुरी तरह से और निकलने का कोई चारा नहीं। बस यही सेंस है कि हमें डिवोटियों का संग करना चाहिए, उनकी बातें फॉलो करनी चाहिए और जो प्रभात वाणी है इसको बिल्कुल, मतलब प्रभात ने कहा था, प्रभात श्रील प्रभात बोलते थे अपने अपने डिसाइपल्स से कि ये बुक मुझे पढ़ के सुनाओ, तो बोलते थे क्यों आपने तो लिखी है आपको पता नहीं है क्या, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ये भगवान बोल रहे हैं। तो हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, कि ये हमें ये समझना चाहिए भगवान बोल रहे हैं यानी कि बिल्कुल सत्य है, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, मतलब इसको मानना ही पड़ेगा। और जब इसको मानेंगे, भगवान बोल भी रहे हैं कि अगर मेरे अंडर गाइडेंस काम करोगे तो आप आ जाओगे इधर तक। थैंक्स गुरु, हरे कृष्ण।
प्रभुपाद जी मैं दूसरे समझा रहे हैं, धीर और अधीर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, धीर और अधीर। प्रभुपाद में दो प्रकार व्यक्ति बता रहे हैं इसमें, धीर और अधीर। धीर व्यक्ति वो है जो मानसिक छोटा कारण उत्पन्न होने पर भी अपनी स्थिति में ध्यान रहता है, परेशान नहीं होता, अपने विचलित नहीं होता। शांत रहता है। और धीर का उदाहरण संस्कृत के महाविद्वान पंडित कालिदास अपनी कृति कुमार स्वामी में दे रहे हैं, बता रहे हैं जब देवतागण विजुद करते हुए असुर प्रास्त हो जाते हैं तो विचार करते हैं और निश्चय करते हैं कि शिव जी के विरुद्ध उत्पन्न सेनापति ही हमारा मर्द बचा सकते हैं हमें, लेकिन शिव उसमें ध्यान लगे हैं, ध्यान बैठे हुए हैं, तो वह शिव का वीर प्राप्त करना बड़ा संभव काम है। तो देवतागण प्रवशु के पास में तरुण बाला पार्वती को भेजते हैं, पार्वती जी शिव जी के सामने उपस्थित होती हैं, उन सामने बैठकर उनके लिंग की पूजा करती हैं, भगवान शिव के लिंग को स्पर्श करती हैं, लेकिन शिव अपनी स्थिति में दृढ़ रहते हैं। कालिदास बता रहे हैं कि ये धीर व्यक्ति का उदाहरण है, कालिदास बता रहे हैं कि यह धीर व्यक्ति का उदाहरण है, हालांकि पार्वती जी भगवान शिव के लिंग को स्पर्श कर रही हैं, लेकिन भगवान शिव को उससे उत्तेजना पैदा नहीं हुई, अपने स्त्री सुदृढ़ है। जो भक्ति धर्म को जानता है वो अपने मन वाणी शरीर से स्थिर बना रहता है। प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, श्री हरिदास ठाकुर के पास कोई व्यक्ति किस तरह वर्षा को भेजता है, तरुण वर्षा श्री राधा के पास आती है और उनसे प्रार्थना करती है कि आप मेरे साथ संभोग करें। श्री आदर्श ठाकुर उनसे कहते हैं आपका जो विचार है अति उत्तम है, आप बैठिए मैं अपना जब समाप्त कर लूँ फिर हम आनंद लेंगे। और इस प्रकार सुबह हो जाती है हरिदास ठाकुर, लेकिन वो जो वर्षा थी अधीर हो जाती है तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मुझे खेद है कि मैं अपना जप पूरा नहीं, मुझे खेद है मैं अपना जप समाप्त नहीं कर पाया, आप रात फिर आइए। वर्षा रात को फिर आती है और हरिदास ठाकुर फिर अपना जप करते रहते हैं। तीसरी रात को वर्षा फिर आती है और आके हरिदास ठाकुर के चरण में गिर जाती है, उनसे प्रार्थना करती है, मैं आपके शत्रु के बहका में आकर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। श्री राज ठाकुर बोलते हैं कि मुझे सब मालूम है लेकिन मैंने आपको यहाँ इसलिए जाने दिया कि आप भक्त बन सकें और आप ये माला लीजिए और भगवान के नाम को जाप कीजिए और मैं ये स्थान छोड़ रहा हूँ। ये भी धीर भक्ति का उदाहरण है। धीर भक्ति और भी कई उदाहरण है, जैसे अमृत महाराज को मारने के लिए दुर्वासा मुनि जो कृत्य उत्पन्न करते हैं तो अमृत महाराज पर कोई शांत खड़े रहते हैं, उनको कोई स्थिति नहीं होते, बिल्कुल अपने स्थिति को धड़े रहते हैं। और अधीर भक्ति वो है कि जो थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति होने पर अधीर हो जाता है। जैसे कंस ने जब भविष्यवाणी सुनी कि देवकी का आठवां पुत्र तेरा वध करेगा तो उसने उसी समय देवकी के केस पकड़ लिए, अपने कपाण निकालने और उनको मारने की उद्यत हो गया। लेकिन वासुदेव धीर थे, उन्होंने बुद्धि से काम लिया और कंस को शांत किया और देवकी के प्राणों की रक्षा की। हम एक और देखते हैं, जब दुर्योधन सभा भवन के अंदर पानी में गिर जाते हैं और रानियां हंसती हैं, उसको मजाक उड़ाती हैं, तो इतना अधीर हो जाता है कि वो प्राणों के प्रति इतना ग्रामीण अनुभव करता है कि उनको मारने के लिए लक्ष्य बनवाया तार वहाँ उनको भेज देते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी हमें एक दूसरी विधि बता रहे हैं। सुखदेव बता रहे हैं केचित के अवला भक्तिया वासुदेव परायणा अगहम धुमंती काष्ठ नीलाहम एक वास्त्र है। कि जो भगवान वासुदेव की भक्ति है, जैसे पहले बताया भी तपस्या दान यज्ञ तप ये चीज़ें हैं, ये काफ़ी जो हमारा जीवन लक्ष्य है ये नहीं है। जीवन लक्ष्य हमारा क्या है? भगवान भक्ति। ये सारी चीज़ें तो भगवान भक्ति करने से जाती हैं। और बताएं जिस तरह सूर्य उदय होता है तो कोहरा अपने आप छट जाता है और सब प्रकाश हो जाता है। तो पता लग गया कि भक्ति भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति कैसे करनी है? प्रतिकूल परिस्थिति होने पर जो व्यक्ति जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति यदि अपनी बुद्धि अपना मन
वो धीर की परिभाषा हो गई लेकिन वो उसको शक्ति कहाँ से आई वो कैसे बना रह पाया वो
तपस्या करने से तपस्या अपना प्राप्त नहीं भक्ति अपना प्राप्त
लेकिन हमारा प्रश्न
हमारा प्रभु ये है इस व्याख्यान से कि वो धीर थे हरिदास ठाकुर शिवजी और अम्बरीश महाराज तो शक्ति कहाँ से मिली कैसे धीर बने रह गए और दुर्योधन और इतने सारे असुर हैं वो अधीर क्यों हैं तपस्या वो भी कर रहे हैं तपस्या वो भी कर रहे हैं है ना प्रश्न अब हम ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसका उत्तर हम सुनते हैं
ये जो तपस्या की जैसे शिवजी का एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने कि उन्होंने तपस्या की तो उन्होंने भगवान कृष्ण की तपस्या की नारायण की तपस्या की भगवान विष्णु की तपस्या करी और हमें भगवान कृष्ण की ही तपस्या करनी है उस तभी हम दृढ़ बन सकते हैं अगर किसी हम और की तपस्या कर रहे हैं तो हम दृढ़ नहीं बन सकते धीर नहीं रह सकते और ऐसे हरिदास ठाकुर जी का जो एग्जाम्पल है वो साक्षात भगवान वो तो कृष्ण की तपस्या कर ही रहे हैं लेकिन शिवजी जो हैं वो जैसे कि भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं उसमें लेकिन भगवान विष्णु भी जो है वो कृष्ण का ही फॉर्म है तो हमें भगवान कृष्ण की ही तपस्या करनी है तभी हम धीर बन सकते हैं अगर किसी और की तपस्या में लगे हुए हैं तो नहीं बन सकते
ये पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है कि जब हम धीर अधीर की बात कर रहे हैं उसकी परिभाषा में चर्चा कर रहे हैं तो धीर बना कैसे अधीर अधीर क्यों है ये बात करना बहुत ही आवश्यक है कि वो धीर इसलिए है क्योंकि विष्णु परायण है वो है ना नारायण परायणा कि वो नारायण की विष्णु की कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं इसलिए उनको वो शक्ति आ रही है वो शक्ति क्यों आ रही है क्यों वो अपनी इंद्रियों पे संयम रख पा रहे हैं क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश है ना क्योंकि जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान इंद्रियों को संतुष्ट कर देंगे तो उस समय इंद्रियों को बाहर जाकर बहिर्मुख होकर कुछ सुख की तलाश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी इसीलिए वो व्यक्ति धीर हो जाएगा तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात कर रहे थे हरिदास ठाकुर की और वैश्या की, तो इसका वर्णन जो प्रभुपाद ने यहाँ पर उदाहरण दिया है, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत की अंत लीला के तीसरे अध्याय में मिलता है हमें, जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज हरिदास ठाकुर की गुणों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। और वो जो वैश्या भेजी थी, वो वैश्या भेजी थी रामचंद्र खान नामक व्यक्ति ने। और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो वैश्या का उद्धार हो गया, बात खत्म हो गई। वो वैश्या का उद्धार हुआ, हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे पता है, पहले क्षण से, पहले दिन से मुझे पता है कि मतलब तुम्हें किसने भेजा है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैं पहले यहाँ से चला जाता, लेकिन तुम्हें देख कर रुक गया कि चलो इसका कल्याण कर दूँ मैं। तो बात लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। दो व्यक्ति थे इस षड्यंत्र में, एक वैश्या और एक रामचंद्र खान जमींदार। तो क्योंकि रामचंद्र खान ने यह षड्यंत्र रचा था, वैष्णव अपराध किया, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं उसने वैष्णव अपराध का बीज बो दिया हरिदास ठाकुर के चरणों में, तो समय आके वृक्ष बन गया और उसमें फल लग गए और उसको उसका फल चखना पड़ा उसको। और क्या हुआ, वहां पर नित्यानंद प्रभु आए और वहां पर प्रचार के लिए नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे, और यहीं पर वो प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं धर्म प्रचारण और पाषंड दनन, हाँ दुई कार्य फिरे अवधूत, ऐसे एक श्लोक जो प्रयाग है कि नित्यानंद प्रभु जो है दो कारण से ही घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, धर्म प्रचारण और पाषंड दलन, है ना, कि धर्म की स्थापना के लिए और जो कुसिद्धांत है, जो दुष्ट लोग हैं उनका दलन करने के लिए। तो जब नित्यानंद प्रभु गए तो उनके उसके घर के बाहर, रामचंद्र खान के घर के बाहर दुर्गा मंडप बना हुआ था, तो वहाँ पे अपने अनुयायियों के साथ बैठ गए, तो रामचंद्र खान खुद उठ के बाहर नहीं आया। तो रामचंद्र खान ने अपने नौकर को भेजा और
तो फ्लक्चुएट हो गया, आप कह रहे हो सही है,
अरे आपके लिए हर चीज़ सही है। सो नित्यानंद प्रभु को के पास भेजा अपने नौकर को, खुद भी नहीं आया, और उनको बोला देखो यहाँ पे जगह कम है, वो वहाँ पे गांव के अस्तबल में चले जाओ, वहाँ पे जगह ज़्यादा है, तो तुम और तुम्हारे अनुयायी वहाँ पे अच्छे से बैठ सकोगे। और नित्यानंद प्रभु को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बोला तुमने सही कहा, ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है। और नित्यानंद प्रभु वहाँ से उठ के अपने अनुयायियों के समेत चले गए, उस गाँव में भी नहीं ठहरे। और क्योंकि रामचंद्र खान ने नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किया, पूरा गांव नष्ट हो गया। जो नवाब था उसके मैजिस्ट्रेट को पता चला कि उसको लगा कि ये घपला कर रहा है, तो वहां पर आया अपने सैनिकों के साथ और दुर्गा, और जब नित्यानंद प्रभु चले गए तो उसने पूरी जमीन खुदवा दी वहां की, क्या शुद्ध हो गई है। रामचंद्र खान ने इतना बदतमीज आदमी था, पूरी जमीन खुदवा दी, उसको गौमूत्र और गाय के गोबर से लीपा, फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी, फिर भी उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी उसकी, क्या मतलब सारा जगह अशुद्ध कर गए। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु चले गए वहाँ से, उसके बाद वो मुस्लिम मजिस्ट्रेट आया वहाँ पर और उसने उसी दुर्गा मंडप में बैठकर गाय का मांस पकाया उसने, और वहाँ पर बैठकर गाय का मांस खाया उसने अपने सैनिकों के समेत, और उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया, पूरा गांव उजाड़ दिया, और 3 दिन तक उसके घर में अमेध्य, जो है अमेध्य प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं, अमेध्य का मतलब गौ मांस, और उसके घर में अंदर घुस के गौ मांस बनाया 3 दिन तक और खाया, और पूरा गांव उजाड़ के चले गए वहां पर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई वैष्णव के चरणों में अपराध कर दे तो उसको नहीं, पूरे गांव को उसकी जो है सजा भुगतनी पड़ेगी उसकी, इतना भयंकर होता है वैष्णव अपराध, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने तो वैश्या पे कृपा की, ठीक है, लेकिन जिसने वैष्णव अपराध किया हमें उसका क्या हशर हुआ, उसका क्या हाल हुआ, उसको भी हमें याद रखना चाहिए, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।
तो वो शिला प्रभुपाद जी ने जब टेंपल के लिए जमीन ली तो वो शिला प्रभुपाद की बायोग्राफी के अंदर उनका नाम मिस्टर एन से लिखा है, पूरा नाम नहीं बताया गया शायद उनकी, ये मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मिस्टर एन बताया शायद इसलिए कि कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। तो उसमें उन्होंने धोखे से उनको ज़मीन दी थी, उस ज़मीन पे पहले भी एक डिस्प्यूट चल रहा था, तो लेकिन जब शिला प्रभुपाद जी को इसका पता चला और उन्होंने अपनी बुद्धिमता से अपने डिवोटीज के साथ मिलकर इसका सॉल्यूशन तो कर दिया था, लेकिन क्योंकि वैष्णव अपराध हुआ था तो इसकी वजह से बाद में मिस्टर एन को उस डिस्प्यूट के दौरान ही जब मुकदमा चल रहा था तो उनको हार्ट अटैक हुआ। तो ये मैंने बायोग्राफी में पढ़ा।
फल भुगतना पड़ेगा, बेसिकली ऐसे नहीं कि आप बच के निकल जाओगे।
तो जैसा कि भगवान कह रहे हैं, सर्व धर्म प्रत्याग मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेक्ष मोक्षयामि मा शुच। तो यहाँ भगवान सारे धर्मों को प्रत्याग करने को कह रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं भोग की तो वो एक तरह की चोर प्रवृत्ति है, और जब हम बात करते हैं त्याग की तो वो एक पागलपन है, क्योंकि कुछ हमारा है ही नहीं। जैसे कि अभी प्रभु जी ने एक्सप्लेन करा कि ईशावासस्य सर्वदम, कि सब कुछ भगवान का ही है, तो हम भगवान का होने के सब कुछ भगवान का अगर है तो उसको कैसे वापस हम भगवान को दे सकते हैं। ये तो एक कृपण की प्रवृत्ति हो गई ना, किसी से लिया और फिर उसी का माल हमने उसको वापस रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि भोग करना चोर है, चोर प्रवृत्ति है, और त्याग करना पागलपन। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो, क्योंकि अगर हम किसी धर्म विशेष में फंस जाएंगे तो हम उसमें अपनी भोग जो भोग इच्छा है उसको पूरी करेंगे। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई पिता अपने बच्चे को पैसे देता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार उस पैसे का यूज़ करता है, वो उसको ये नहीं सोचता कि मेरे पिता द्वारा दी गई है, वो उस पैसे को अपना मान करके अपनी इच्छा के लिए लगाने लगता है। तो जब सर्वधर्म प्रत्याग तक की स्थिति पे आने के लिए हमें सतोगुण में आना पड़ेगा, उसके लिए ब्राह्मणिकल कार्य करने पड़ेंगे, और ब्राह्मणिकल कार्य करने के लिए हमें श्रद्धा और श्रद्धा और मूर्खता से नहीं, ज्ञान के साथ भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। सभी धर्मों को छोड़ने के लिए भगवान प्रेरित के जो उन्होंने किसी भी व्यक्ति ने अपने मनोविचारों से धर्म को बना रखा है। यहाँ प्रभुपाद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि दूसरी भोग तो चोर कर्म है, और उसके बाद ये सर्वधर्म प्रत्याग मामेकम शरणम का निर्देश दे रहे हैं भगवान। तो उसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें जो भी है ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए, और ब्राह्मण भी ऐसा ब्राह्मण नहीं जो बाय बर्थ या अपने आप को जन्म का अधिकारी मान करके अपने आप को ब्राह्मण समझ के ऐसे कार्य करे, और अपने को अपनी जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंस के अपने ब्राह्मणत्व का मिसयूज करें। ब्राह्मण उसे बनना चाहिए ऐसे कार्य करके, जैसे कि उदाहरण भी दिया जा रहा है कि अगर कोई न्यायाधीश है, और अगर न्यायाधीश का पुत्र अगर न्यायाधीश का पढ़ाई लॉ की पढ़ाई नहीं करेगा तो बिना पढ़ाई के वह न्यायाधीश नहीं बन सकता। तो
ब्राह्मणिक ब्राह्मण बनने के लिए सत्वगुणी अपने आप को सत्वगुण में स्थित करने के लिए, क्योंकि सत्वगुण में रहकर ही भगवान की भक्ति की जा सकती है और किसी भी गुण में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो एक प्रभुपाद बहुत ही अच्छी लाइन इसमें जो मैंने भी पहले भी रिपीट करी थी कि ब्राह्मण तो सत्वगुण में स्थित होगा ना, ब्राह्मण लिखा तो नहीं है पर मैं ब्राह्मण, ब्राह्मण तो सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे हो। वो तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि कृष्ण भावना मृत के स्तर तक पहुंचने के लिए ये ब्राह्मण बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण भावना मृत के स्तर तक पहुंचना ही नहीं है तब तक वो तो किसी और स्तर से पहुंचा ही नहीं जा सकता, पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ये है लाइन सब रही। जिससे द्वारा मनु ये तो इस अध्याय में पहले ब्राह्मण बनने के बाद प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के फिर चैतन्य महाप्रभु के भक्ति में प्रवेश करके तब हम त्याग और तपस्या को छोड़ सकते हैं, क्योंकि भक्ति में ये सब चीज़ें अपने आप पूर्ण रूप से आ सकती है। पहले प्रोसेस से प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे जाके भक्ति कैवल्य बाद में प्रभुपाद उसको लेके आ रहे हैं भक्ति को, पहले तो वो ब्राह्मण बनने को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू इसके तो इसीलिए तो हर वस्तु यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि उन गुणों का अभ्यास करें जिससे परम सत्य की अनुभूति की जा सकती है।
क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ब्राह्मण बनना है, हमें ब्राह्मण नहीं बनना, हमें वैष्णव बनना है। जब हम वैष्णव बनेंगे ब्राह्मण के तो समाज से,
तो फिर ब्राह्मण की बात यहाँ प्रभुपाद लाई क्यों रहे हैं? अगर ब्राह्मण बनने
ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण के जो गुण क्या है, और अगर आप अपने आप को ब्राह्मण कहलवाना चाहते हो तो ब्राह्मण के गुणों का पालन, और फिर प्रभुपाद लास्ट में ये लाइन लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लगकर ब्राह्मण के समान कर्म करे। तो जो जो फोकस है, जो जो जोर दिया जा रहा है जिस बात पे, वो भगवान कृष्ण
अब ये जो अपितु उसे ब्राह्मण के समान कर्म भी करना चाहिए, तो यानी कि एक लेवल पे इससे ये निकल रहा है कि ब्राह्मण
नहीं, इससे ये निकल रहा है कि ब्राह्मण जब आप वैष्णव बनोगे तो ब्राह्मण के क्या आ जाएंगे आप। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरी किताब लिखी इसके ऊपर, ब्राह्मण और वैष्णव। तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण आपने कहलाना है तो जन्म के धर्म मत कहलाओ, चतुर्वर्ण म्यान सिस्टम
गुण कर्म विभाग से।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पहले ब्राह्मण बनने का प्रयास करना है, हमें ब्राह्मण बनने का अलग से प्रयास नहीं करना, हमें भगवान की सेवा में लगना है। जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो अपने आप ब्राह्मण के बारे में तो हमारा जोर ब्राह्मण से वैष्णव बनने में नहीं है, हमारा जोर वैष्णव वैष्णव बनने
में। तो फिर प्रभुपाद ने सीधा ही वो फिर आगे एक्सप्लेन करना कि यह विधि केवल अत्यंत भागशाली व्यक्ति द्वारा ही ग्रहण की जाती है, अतः चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता ब्रिज। कृष्ण तथा गुरु की दया से भाग्यवान व्यक्ति ब्रह्मांड भर में विविध योनियों में घूमने पश्चात शुद्ध भक्ति के बीज प्राप्त करता है, और क्योंकि एकमात्र इस विधि को स्वीकार करके मनुष्य तपस्या त्याग ब्रह्मचर्य आदि सारी कार्यों को लांग जाता है। तो इट मीन्स पहले जो प्रभुपाद ब्राह्मण बनने की बात कर रहे हैं वहीं से तो लांगेगा ना, या
आपका कंक्लूजन गलत आ गया आपका। आपने ब्राह्मण बन के उसको लांघना नहीं है, कहाँ जरूरत पड़ रही है, कौन कर रहा है तपस्या यहाँ पर इस कौन में? एक भी व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा, हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? हम तपस्या के नाम पे 16 माला का जप कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? क्या चीज छोड़ दी हमने बताओ? अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं हम, हर हमने कौन सा ऐसा नियंत्रण कर लिया हमने? जो महत्वपूर्ण बात, जो ये अच्छा हुआ कि ये बात, ये डिस्कशन हो रही है, हमें ब्राह्मण बनकर उसको लांघना नहीं है, हमें ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है, है ना? जब हम वैष्णव बनेंगे तो अपने आप ब्राह्मण बन जाएंगे, अलग से हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, अगर आपने ब्राह्मण कहलाने का शौक है तो भैया आप पहले शिक्षा, ब्राह्मण किसे कहते हैं उसकी शिक्षा लो, फिर उसका अभ्यास करो और फिर उसका ज्ञान लो। ये तीन चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं इस चैप्टर में, है ना? आप जाके देखिए, ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म से उत्पन्न नहीं होता, अपितु शिक्षा अभ्यास और ज्ञान से उत्पन्न होता है। तो क्या हम ब्राह्मण बन जाएं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्राह्मण बन जाएं। ब्राह्मण हम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे अगर हम अच्छे वैष्णव बन जाएंगे तो, है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम ये नहीं सोचें कि पहले हम अपने में ब्राह्मणों के गुण लेके आएंगे, वैष्णवों के गुण लेके आओ। वैष्णवों के गुण ब्राह्मणों के गुण से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो जब आप वैष्णवों के गुण ले आओगे तो ब्राह्मणों के गुण अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे, 100 रुपए के नोट में 50 रुपए उसके अंदर शामिल है, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है बात, ये वाली, ठीक है ना? तो ब्राह्मणत्व है वो वैष्णवता का आधार नहीं है, आप सहायक भी क्यों कहना चाहते हो? चलो तो इसका मतलब मलेच्छ का क्या होगा फिर, जो यवन है उसका क्या होगा? हरिदास चैतन्य महाप्रभु ने पूछा इसी अंत्य लीला के 3rd अध्याय में, चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताओ भैया कि जो चलो वैष्णव का कल्याण हो गया, लेकिन जो यवन मलेच्छ है उनका क्या होगा? तो उन्होंने बोला उसने हा राम भी बोल दिया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, आप हराम को हा राम स्वीकार कर लोगे। और उन्होंने कहा कि इसको भी छोड़ो, अगर राम इकट्ठे भी नहीं आ रहा, हरि इकट्ठे भी नहीं आ रहा, एक शब्द में ह आ रहा है, दूसरे शब्द में री आ रहा है, तो उन्होंने उदाहरण दिया हलम रिक्त का। अगर कोई बोलेगा हलम हलम रिक्त, तो भगवान ह और री ले लेंगे, हरि ले लेंगे शब्द भगवान। आप पढ़ो अंतलीला का 3rd अध्याय, बिल्कुल क्लियर प्रभुपाद उसमें उदाहरण दे रहे हैं। हाँ तो हम प्रयास कर रहे हैं, हाँ
वो बात सही है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम आज जिस धरातल पर हैं वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि बल किस पर देना है। टारगेट की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि साधन जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो बल किस पे देना है, ब्राह्मणत्व पे बल देना है कि वैष्णवत्व पे बल देना है। तो बात यह आ रही है कि हमें वैष्णवत्व पे बल देना है।
तो क्या वैष्णव तीनों गुणों से परे होता है?
वैष्णव तीनों गुणों से ऊपर ही होता है। नहीं, वैष्णव तीन गुणों से ऊपर होता है, परंतु अब ये डिफाइन कौन करेगा कि कोई वैष्णव है कि नहीं है? उसे उसे अच्छा वैष्णव तो यही समझ, ये तो क्या कहते हैं, भगवान और गुरु और शुद्ध भक्त यही समझ सकते हैं कौन वैष्णव।
अरे वैष्णव ऐसे नहीं कि वैष्णव तीनों गुणों से परे है, तीन तरह के वैष्णव है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उत्तम अधिकारी वो तीन गुणों से परे है, लेकिन जो कनिष्ठ और मध्यम है वो तो अभी गुणों के अधीन है, वो चल रहा है, वो भक्ति करके उससे बाहर निकल जाएगा, वो
उच्चतम अधिकारी है। फर्स्ट लेवल का जो वैष्णव है, उत्तम अधिकारी को तो वैष्णव उसकी क्रियाकलाप से पता चल जाता है कि उसके हाव भाव से वो, परंतु दूसरे मध्यम
अधिकारी
आभास तो लग जाता है,
लग ही नहीं सकता आभास।
तो फिर मध्यम मध्यम अधिकारी, एक मिनट, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी को वैष्णव ना मान के वैष्णव प्राय माना जाए, क्योंकि परफेक्शन नहीं आई ना।
वो ठीक है, परफेक्शन नहीं आई। वैष्णव प्राय किसको बोला जाता है? वैष्णव प्राय डॉक्टरनी को बोला जाता है, डॉक्टर की बीवी है, और डॉक्टर की बीवी को क्या बोलते हैं लोग? डॉक्टरनी बोलते हैं। क्या दवाई लेते हैं उससे? दवाई नहीं लेते। सो वैष्णव प्राय का मतलब है जो वैष्णव जैसा दिख रहा है नहीं, उससे शिक्षा मत लो। तो क्या मध्यम अधिकारी से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? मध्यम अधिकारी ही शिक्षा देगा। उत्तम अधिकारी तो बोलेगा, भैया तुम तो शुद्ध भक्त हो, तुम्हारे चरण रज मुझे लेने चाहिए, तुम कहाँ पे क्या बात कर रहे हो? उत्तम अधिकारी तो ये बोलेगा, उसको तो हर कोई भगवान का शुद्ध भक्ति दिख रहा है, उसको तो माया दिख ही नहीं रही उसको, नहीं। सो कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी जो है वो वैष्णव है, लेकिन अभी वो आगे और भी सोपान है, आगे बढ़ना है, उनको बाहर निकलना है, अभी अभी और उनको आगे बढ़ने की जरूरत है उनको। तो क्या शुद्ध भक्त को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? उसको भी जरूरत है, क्योंकि अनंत है। ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्त बन गए भैया चलो बैठ जाओ कुर्सी पे, नहीं। और ऐसा नहीं है कि
चल रहा है।
और ऐसा नहीं है कि वैष्णव की क्रिया से हम समझ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि समझ जाएं। इसीलिए प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि देखो अपने गुरु में दृढ़ विश्वास रखो। अगर आपको गुरु की कुछ बात नहीं भी समझ में आ रही है तो भी विश्वास रखो, क्योंकि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे, नहीं समझा जा सकता वैष्णव की क्रियाओं को। वैष्णव कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो पता नहीं क्या सोच के क्या करेगा, हम था नहीं पा सकते। एग्जाम्पल, एक बार इस्कॉन में सभी कहते हैं भिखारियों को पैसा नहीं देना चाहिए, जाके शराब पियेंगे तो पाप लगेगा, है ना। एक बार मैं गोपाल कृष्ण महाराज के साथ जा रहा था, भिखारी आया, भीख मांगी उसने, महाराज ने मुझे कहा 10 रुपए हैं, मैंने दिए, महाराज ने उसको पकड़ा दिए, ले जा भैया। अब आप क्या समझोगे इसको। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ओडिशा में किसी गांव में जा रहे थे, बैलगाड़ी में बैठे हुए थे, तो एक लड़का आया साइकिल पे और वो बैलगाड़ी के साइड से होकर निकल रहा था वो। अब गांव में तो छोटी होती हैं तो निकलने की जगह मिल नहीं रही थी, तो बैलगाड़ी के पीछे साइकिल चला रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पूछा, ठीक हो? हाँ ठीक है, चला गया वो, निकल गया। सब पूछ रहे हैं, यार ये कैसे है? मतलब ये कोई क्वेश्चन है क्या पूछने वाला? और वही लड़का कुछ टाइम के बाद गौड़िया मठ में आके ब्रह्मचारी बन गया। सिर्फ यही पूछने से एक शुद्ध भक्त ने पूछ लिया और ठीक हो, कृपा दृष्टि डाल दी उसके ऊपर। सो हम नहीं सोच सकते, प्रभुपाद ने पूरा मूवमेंट जो है चेंज कर दिया, गौड़िया मठ के सिद्धांतों को कितने फेर बदल किए प्रभुपाद ने। तो उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ, स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा दे दी प्रभुपाद ने, पहले नहीं दे रहे थे परंपरागत विधि के अंदर, लेकिन प्रभुपाद ने दी। प्रभुपाद सन्यासी जो है वो विवाह नहीं कराता जाके, प्रभुपाद ने कराए। मंदिरों में स्त्रियों को नहीं रहने दिया जाता, प्रभुपाद ने रखा। वो क्या सोच के कर रहे थे उस समय लोग नहीं समझ पा रहे थे, आज भी नहीं लोग समझ पाते बहुत सारे, लेकिन हम परिणाम से जांच सकते हैं कि वो काम सही था कि गलत था। तो आप परिणाम देख लो, क्या परिणाम हुआ उसका। पूरे संसार में प्रभुपाद का यह आंदोलन फैल गया, पूरे संसार में लोग चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नामों का जप कर रहे हैं, जोर जोर से नाच रहे हैं यवन मलेच। तो फलम परिचायते, फल से पता चल जाएगा कि जो काम किया गया था वो सही था कि गलत है, है ना। अभी हम नहीं समझ पाएंगे। इस कौन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें लगता है जो भक्त जिनको टाइम हो जाता है उनको लगता है ये बदलना चाहिए, वो चीज़ चेंज होनी चाहिए, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, जो वहाँ के जीबीसी है नहीं चेंज करते। अवले यार उनको दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा क्या? तो हमें कई बार डाउट हो जाता है कि पता नहीं वो मतलब सही से कर भी नहीं रहे, कर रहे हैं नहीं कर रहे मैनेजमेंट, लेकिन वो सही मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको इतना सब पता है, उनको इतना सब कुछ पता है, वो पूरे 1 करोड़ चीजों को देख के एक डिसीजन ले रहे हैं। वो एक बार हम 3-4 भक्त गए गोपाल कृष्ण महाराज के पास, हमने कहा महाराज वो बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत तंग कर रहा है, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस भक्त के साथ। तो महाराज ने कहा क्या तुम उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो? हमने कहा नहीं, हम तो पैसा कमाए घर चलाए या ये जगह लें। तो महाराज ने कहा चुप करके बैठे रहो, मुझे भी पता है वो कौन है, वो क्या कर रहा है, मुझे यही पता है तुम क्या कर रहे हो। उसको भगा दूंगा, जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? सो वैष्णव जो है, जो गुरु है, वो क्या सोच के क्या कर रहे हैं, हमें उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए हमें, तब हम भक्ति में दृढ़ रह पाएंगे। हम सोचें कि हमारे हिसाब से होना चाहिए काम, तो फिर परेशानी है, फिर तकलीफ है ना। वो तो अगर हाँ पहले लिया, री बाद में लिया, हरी चलो बना लिया, भगवान ने सोच लिया, तो कृपा कैसे होगी? तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं नामाभास के द्वारा। तो कह रहे हैं जैसे सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, उससे पहले किरणें आ जाती हैं, अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध नाम अगर नहीं भी हो, नामाभास भी हो गया, तो भी
कल्याण हो जाएगा। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया अजामिल का।
हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें अजामिल जो है वो उनके दिल में
भी भक्ति भाव नहीं हुआ, वो अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, भगवान को तो नहीं पुकार रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सेकंड चांस दिया। इसी के ऊपर ही बुक है श्रील प्रभुपाद जी की, द सेकंड चांस। हाँ, तो इसका मतलब नाम की अपनी महिमा है पर्टिकुलर। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि अगर मान लीजिए ज्ञान नहीं है आपको, मान लो आप मान लीजिए स्टडी नहीं कर रहे हो, शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हो और सिर्फ नाम ले रहे हो, भजन कर रहे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, यू विल बिकम घोस्ट, आप प्रेत आत्मा बन गए, क्योंकि आपने ज्ञान की तलवार से आपने अपने हृदय के अंदर जो लोभ था, क्रोध था, मोह था, उसको नहीं काटा, लेकिन आप सिर्फ नाम ले रहे हो भगवान का। तो ऐसा भी प्रभु जी कई बार कि सिर्फ नाम लेने मात्र से कुछ नहीं होता है, और उसके साथ साथ में आपको ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञान की महिमा नहीं है, ज्ञान है अपनी जगह पर ऐसे भी तो लोग हैं दुनिया में जो मतलब कि नाम ले रहे हैं भगवान का, और कहीं ऐसे भी हैं जो बिना संप्रदाय के नाम ले रहे हैं, कुछ संप्रदाय के अंदर नाम ले रहे हैं। तो उन सब लोगों का क्या होगा जो बिना संप्रदाय के नाम ले रहे हैं?
सो देखो, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं, टाइम भी 9:05 हो गए हैं अभी। सो 5 मिनट ले लें। सो पहली बात है कि संप्रदाय से अगर संप्रदाय के बिना नाम लेंगे तो उसका फायदा है कि नहीं है? संप्रदाय विहीना ये मंत्रा ते निष्फला मता। संप्रदाय के बिना अगर हम 4 संप्रदाय हैं, है ना, श्री रुद्र, ब्रह्म और कुमार संप्रदाय, तो इन 4 संप्रदायों के अलावा अगर हम कहीं से कुछ भी मनगढ़ंत नाम ले रहे हैं तो वो निष्फल है, उसका कुछ फल नहीं मिलेगा उसका, पहली बात। हाँ, भगवान का नाम ले रहा है उसको लाभ मिलेगा, लेकिन उसका निष्फल है का मतलब क्या है? निष्फल है का मतलब है भगवत धाम नहीं जा पाएगा उसको, उसका लाभ मिलेगा उसको। जब हराम बोलने से लाभ मिल रहा है तो सीधा कृष्ण बोलने से लाभ क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा उसका लाभ, लेकिन भगवत धाम नहीं जा पाएगा वो, ठीक है। और आपका जो पहला प्रश्न जो आपने उठाया था कि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ नाम लेने से काम नहीं बनेगा, प्रेत बन जाओगे, घोस्ट बन जाओगे, वो घोस्ट बनता है जो नाम के बल पर पाप कर रहा है, वो घोस्ट बनता है। जो नाम ले रहा है और पाप किए जा रहा है तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये बात की चर्चा जो है भक्तिनोद ठाकुर कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि में, ठीक है ना। लेकिन क्या सिर्फ नाम लेना चाहिए? ज्ञान नहीं लेना चाहिए, सिर्फ नाम लेना पर्याप्त है, बशर्ते आप संप्रदाय के अंदर नाम ले रहे हो। संप्रदाय से बाहर जाकर नाम ले रहे हो, जैसे हमने बात किया, निष्फल है वो, ठीक है ना।
इतना समझ लिया कि कृष्ण भगवान है सिर्फ, और उसी के बेसिस पर मतलब संप्रदाय में आके गुरु के अंदर, ये सिर्फ अलग अलग परिस्थिति होती है किसी भी भक्त की,
कोई ओल्ड है, कोई अभी इस परिस्थिति में नहीं है कि मंदिर बार बार आ सके या अध्ययन कर सके, किसी की आंखें नहीं है, लेकिन उसने इतना जान लिया कि कृष्ण भगवान है और अब वो माला में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसका तो फिर ही इज क्वालिफाइड टू गो टू गोलोक।
अगर संप्रदाय में आ गए और हरिनाम में रुचि आ गई तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो भगवत धाम जाएगा वो जीव। और ज्ञान और वैराग्य भक्ति पर आश्रित है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य पर आश्रित नहीं है। जनयति ही आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। भक्ति करेंगे, जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे तो ज्ञान और वैराग्य जनयति ही आशु, बहुत ही आशु मतलब बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति नहीं आएगी, भक्ति का जो कारण है, भक्ति का कारण भक्ति है, भक्ति का कारण ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जानना। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई इस्कॉन में आ गया, वृद्ध है, नहीं पढ़ सकता भगवद गीता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सुन सकता लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से माला कर रहा है, गारंटीड है भगवान के धाम जाएगा वो,
कौन? ओ ये कह रहे हैं कि हमारी परंपरा में भी तो आ रहे हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो अनपढ़ थे, लेकिन वो तो इतने, उनको इतनी नॉलेज थी, वो जो बोल रहे थे, आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ो, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने जो बोला वो वेद वाक्य है। तो वो अनपढ़ थे, लेकिन क्या उनको जानकारी, क्या उनको भगवत ज्ञान नहीं था? उनको पूरा भगवत ज्ञान था, ठीक है ना। तो अनपढ़ होने में और अज्ञानी होने में फर्क है।
इसी से फिर प्रभु जी एक चीज, इसी से एक चीज और निकल के आती है कि इस तरह की विचारधारा से कि सिर्फ नाम ले लो, इससे फिर सहजिया बन जाते हैं, सहजिया, कि कलयुग में तो सिर्फ नाम है, भजन है और इसी से ही कल्याण हो जाता है। तो एक टर्म यूज करते हैं कि सहजिया अप्रोच है।
तो अब प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, सहजिया की परिभाषा क्या है?
सहजिया वो लोग हैं शायद जो कि भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पर उनके पास में कोई भी कोई ऑथेंटिक स्क्रिप्चर या ऑथेंटिक गुरु नहीं है, और वो सिर्फ दे आर जस्ट दे एक्सेप्टिंग सुप्रीम गॉड कृष्णा, वो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन, जैसे कि यहाँ पे गोष्ठी हो रही है, शास्त्र के आधार पे चर्चा हो रही है, और सिर्फ नाम लेके ही वो लोग सोचते हैं कि उनका कल्याण हो जाएगा।
सहजिया वो लोग हैं जो विधि विधानों का पालन करने में सक्षम है और नहीं कर रहे हैं, वो सहजी हैं। जो विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे, जो नहीं पढ़ सकते और इस कारण से नहीं पढ़ रहे, वो सहजिया नहीं हो सकते। वो सहजिया का मतलब है कि आप कर सकते हो और सहज ले रहे हो, यार क्या जरूरत है करने की, वो सहजी हैं, लेकिन आप कर ही नहीं सकते, क्षमता नहीं है, फिर बोलो यार तू सहजिया भैया, तू सहजिया, तू सहजिया। अंधे को बोलो अरे तू देख नहीं रहा, देख कौन से कलर की ड्रेस डाली है, तो सहजिया थोड़ा ना हो गया, वो देख नहीं पा रहा वो। तो जब क्षमता नहीं है तो नहीं किया वो सहजिया नहीं है, क्षमता है नहीं किया वो सहजिया। ठीक, आपका